ओम शांति। हम सब खुशियां चाहते हैं और खुशियां हमारे पास सदा रहे, लेकिन उसका आधार क्या है? तो खुशियों का आधार गुप्त याद और गुप्त सेवा, इस विषय पर क्लास करा रही हैं आदरणीय उर्मिला बहन जी का। हम सभी करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उर्मिला बहन जी का जन्म 3 जनवरी 1964, आपकी शिक्षा है एमए इंग्लिश कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और ज्ञान में आप आए 1981 से, और 1985 में आपने अपना जीवन समर्पित किया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के मुख्यालय माउंट आबू में राजयोग शिक्षिका, संयुक्त संपादिका ज्ञानामृत मासिक पत्रिका व सह संपादिका त्रैमासिक हरियाली पत्रिका। आपने अनेक आध्यात्मिक अभियानों द्वारा भारत के विभिन्न प्रांतों तथा नेपाल में भी ईश्वरीय सेवाएं की है। अफ्रीका के केन्या देश में भी आपने अपनी सेवाएं दी। आपने अनेक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में विभिन्न विषयों पर संबोधित किया है। ईश्वरी विश्वविद्यालय के रिफ्रेशर कोर्स तथा विभिन्न विभागों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आपका सक्रिय योगदान रहता है। आप बहुत अच्छी लेखिका हैं, आपके लेख परिवर्तनकारी होते हैं, अनेक पत्रिकाओं में आपके लेख छपते रहते हैं। अमृत संचय नाम से आपकी एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई, तनाव मुक्त जीवन, व्यसन मुक्त जीवन, क्रोध मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन, स्वप्रबंधन, नेतृत्व कला, व्यक्तित्व विकास, माइंड मैनेजमेंट आदि अनेक विषयों पर आप वक्तव्य देती हैं। कंपनीज, यूनिवर्सिटीज, स्कूल, कॉलेजेस तथा अन्य अनेक प्रकार के संस्थाओं में आपने प्रवचन दिए तथा राजयोग अनुभूति करवाई है आदरणीय उर्मिला बहन जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाबा ने मुरली में हम बच्चों को खुशी की अमूल्य सौगात दी, तो आज हम चर्चा करेंगे कि बाबा ने जो होमवर्क दिया है, हम खुद भी खुश रहें, खुशियां बांटें और कैसी भी परिस्थिति आए लेकिन हमारी खुशी कायम रहे, इसके लिए हम क्या सावधानियां और क्या विधियां अपनाएं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान एक किसान को माना गया है। किसान कौन सी बुद्धिमत्ता करता है? जब वो बीज बोता है तो उसके ऊपर मिट्टी डाल देता है, कभी भी बीज को खुला नहीं छोड़ता। अगर बीज खुला रहे तो चिड़िया खाएगी, अगर बरसात की बूंद गिरे तो बीज फूल जाएगा, गिलहरी भी कुतर जाएगी, और अगर तेज धूप उसके ऊपर पड़े तो उसके अंदर का जो सॉफ्ट भाग है वो बिल्कुल ही सुकड़ जाएगा, सूख जाएगा। लेकिन जब उसको मिट्टी से ढक देती हैं, तो वो अंदर ही अंदर क्रिया करता है और फिर उस एक दाने से हमको हजारों दाने मिलते हैं। जीवन में हम जो भी अच्छे काम करते हैं अगर उनको भी यूं ही ढक दें तो वो भी बीज की तरह से फलते रहेंगे, फूलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, कई गुना होते रहेंगे। लेकिन अगर हमने उनको खुला छोड़ दिया तो जैसे खुले बीज का हमने वर्णन किया क्या क्या उसका हस्र हो सकता है, वैसा ही हो जाएगा। इसलिए कहा गया है गुप्त दान महाकल्याण, चाहे कोई भी श्रेष्ठ कर्म हो, मनसा वाचा कर्मणा धन के द्वारा कैसे भी हमने किया, लेकिन गुप्त होगा तो बढ़ेगा, प्रत्यक्ष होगा तो घटेगा। एक बार दादी जानकी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि दुनिया में लोग जब दान करते हैं तो सबको अपना हाथ दिखाते हैं, देखो भाई मैंने इतना दान किया है, लेकिन जब चोरी करते हैं तो अपने हाथ को पीछे ले जाते हैं। अब इसका फल क्या निकलता है कि जो चीज उन्होंने दुनिया को दिखा दी, जो दिख गई वो तो कम हो गया, और जो हाथ पीछे छिपाया था वो गुप्त रह गया, और गुप्त चीज बढ़ती है, तो उल्टा हो गया, दान कम हो गया, चोरी ज्यादा हो गई। और आज तो देखो दुनिया में चोरी भ्रष्टाचार यही सब कुछ। बाबा की याद में दो मिनट।
शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है, अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता
शांति। जब हम बैंक में पैसा जमा कराने जाते हैं तो किसी को बताते नहीं है, चुपचाप जमा कराते हैं, कोई पूछता भी है तो भी पैसे की बात नहीं करते हैं, बात को टाल देते हैं, छिपाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमको पता है किसी को पैसे का पता पड़ जाए, कोई छीन ले या कुछ और हो जाए, तो जो हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, वो भी तो एक प्रकार से बैंक में ही डालना है ना। तो जैसे हम बैंक में डालते समय सबसे छिपा के, घर के नजदीक के लोगों से भी छिपा के कई बार डालते हैं, तो ये भी कर्म जितना गुप्त होगा उतना सुरक्षित होगा और उतना ही ज्यादा फलदायी होगा। बीमारी भी शरीर में जब तक गुप्त रहती है तब तक बढ़ती जाती है, जैसे ही प्रत्यक्ष हो जाती है उसके बाद तो इसका इलाज शुरू हो जाता है। इसलिए बाबा कहती हैं, दान ऐसा होना चाहिए, श्रेष्ठ कर्म ऐसा होना चाहिए जो एक हाथ से करो तो दूसरे को पता नहीं पड़े, और तुरंत भी होना चाहिए। इसलिए ये भी कहते हैं तुरंत दान महाकल्याण, क्योंकि अगर आपने संकल्प करते ही नहीं किया तो बाद में तो संकल्प ढीला हो जाता है और बाद में फिर संकल्प खत्म हो जाता है। एक होता है दान, एक होता है महादान और एक होता है वरदान। दान तो हम सभी जानते हैं, द्वापर युग से हम करते आए, धन का दान, स्थूल वस्तुओं का दान, इसकी एक लिमिट होती है। जैसे हमने किसी को एक लड्डू खाने को दिया, उसने लड्डू खाया, लड्डू खत्म हो गया, हमारे पास से तो खत्म हो ही गया, उसने भी खा के खत्म कर दिया। एक रुपया दिया, हमारे पास से तो चला ही गया। लेकिन अगर हम किसी को एक किताब देते हैं, भले एक रुपए की हो, दो रुपए की हो, लड्डू को तो एक आदमी खा सकता है, किताब को कितने लोग पढ़ सकते हैं? बहुत सारे लोग पढ़ सकते हैं, और किताब को तो आप अगली पीढ़ी तक भी ले जा सकते हैं, रखी रहेगी, और एक बार नहीं, उसको 10 बार 1000 बार पढ़ सकते हैं, और केवल आप नहीं और भी अनेकों को पढ़ा सकते हैं। तो एक रुपए के लड्डू की उपयोगिता कितनी और एक रुपए की किताब की उपयोगिता कितनी? किताब की ज्यादा हुई। इसलिए स्थूल चीजों के दान को केवल दान कहा जाता है, और अगर वो ज्ञान का दान है तो उसको महादान कहते हैं, और फिर उससे आगे वरदान। हमने किताब पढ़ करके ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन उस ज्ञान के आधार पर जीवन बनाना, गुण और शक्तियां अपने जीवन में ले आना, उसमें बहुत मेहनत लगती है। लेकिन अगर कोई ऐसा है कि उसने ज्ञान के द्वारा अपने जीवन को गुणवान और शक्तिशाली बनाया, और वो बिना मेहनत के दूसरों को दे सकता है गुण और शक्तियां, तो ये उससे भी बड़ा हो गया, इसलिए उसको हम कहते हैं वरदान। तो बाबा कहती हैं, संगम पर आप बच्चे दानी नहीं है, लेकिन महादानी और वरदानी हैं, और इस महादान और वरदान के फलस्वरूप ही दुनिया बदलेगी। दान तो द्वापर युग से होता आया, लेकिन फिर भी दुनिया नीचे गिरती गई। अब हमको ज्ञान दान और गुणों का दान करना है। कई बार लोग ये सवाल पूछती हैं कि अमुक व्यक्ति बहुत बड़ा दानी है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में रोग है, शोक है, अशांति है, कारण क्या है, खुशी नहीं है। अब आप देखिए अखबार का एक छोटा सा कॉलम, भले ही हथेली जितना हो, अगर इतना भी हमको उसमें कुछ मैटर डलवाना हो तो हमसे वो हजारों रुपए ले लेते हैं। क्यों ले लेती हैं? क्योंकि अखबार में डाली हुई चीज लाखों लोगों तक पहुंचती है, लाखों तक हमारा नाम गया, लाखों लोगों ने पढ़ करके हमको जान लिया, तो इसके बदले में वो पैसा तो लेंगे ही। लेकिन दान करने वाला व्यक्ति अपने दान का अगर प्रचार कर लेता है, तो जैसे अखबार से नाम हुआ, प्रचार से भी नाम हो गया, तो तो जो उसने दान में लगाया था या सेवा की थी वो तो उसके नाम के प्रचार में कट गया, उसकी पेमेंट में चला गया। और कई बार तो होता ऐसा है कि दान की कीमत कम होती है और प्रचार कीमत से ज्यादा का हो जाता है तो कर्ज भी चढ़ जाता है। इसलिए लोग कहते हैं देखो ये बेचारा दानी और इस बेचारे को बीमारी भी है, काल मृत्यु भी है, इसके परिवार में शांति भी नहीं है, तो कारण यही हुआ। खुशी कहाँ से मिलेगी, वो तो कर्जदार हो गया, दिया कम और लिया ज्यादा। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं नाम मान शान की इच्छा मत रखो। आज सुबह जो हमने मुरली सुनी उसमें बाबा ने कहा कई बच्चे अपनी प्रसन्नता का आधार प्रशंसा बनाते हैं, कोई दो बोल बोल दे तो उमंग आ जाता है, अगर कोई महिमा ही ना करे, पहचान ही ना हो तो फिर मायूसी आ जाती है, हमें तो कोई जानता नहीं पहचानता नहीं, हमने इतना काम किया कोई पीठ थपथपाता नहीं। बाबा ने कहा ये जो अवस्था है ना, ये मिलावट वाली अवस्था है, सच्ची अवस्था नहीं है। बाबा ने उदाहरण भी दिया कि आजकल लोग भवन बनाते हैं तो उसमें सीमेंट के साथ मिट्टी मिला देते हैं, आपने भी देखे होंगे ऐसे भवन, ऐसे पुल देखे होंगे, बहुत बिल्डिंग्स देखी होंगी, आज बनाते हैं और कल अगर आंधी आई तूफान आया कुछ भी आया तो वो उलट जाता है, और उसके बाजू से आप गुजरेंगे तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि आखिर बिल्डिंग सीधी है कि उल्टी है, आखिर ये है क्या। एक झोंका भी उसने सहन नहीं किया। ऐसे ही कई बच्चों की अवस्था होती है, महिमा होती रही मुस्कुराते रही, लेकिन जरा सी परिस्थिति आई, थोड़ा पीछे कर दिया, थोड़ा नाम नहीं लिया, थोड़ा आगे नहीं किया, तो वो भी उस बिल्डिंग की तरह से उलट पलट हो जाते हैं बेचारे, क्योंकि महिमा के आधार पे स्थिति थी ना। इसलिए बाबा ने कहा अपने पुरुषार्थ के आधार पे अपनी स्थिति बनाओ, महिमा के आधार पर नहीं। इतनी मजबूत स्थिति बनाओ कि चाहे कुछ भी आए, परिस्थितियां आए, बातें आए, कोई विरोधी आए, लेकिन फिर भी आप स्थिर रहें। बाबा ने कहा मान शान अल्पकाल के लिए मिल जाता है, मीठा भी लगता है, दिखावा भी थोड़ी देर के लिए बहुत महिमा करवा देता है, लेकिन रियल चीज रियल होती है, दिखावे की चीज दिखावे की होती है। जैसे आदमी से जो काम बन सकता है वो आदमी की परछाई से तो नहीं बन सकता, तो जो दिखावा है नाम मान है वो तो परछाई की तरह से है, और परछाई तो आर्टिफिशियल है, रियल तो नहीं है। दिखावा आर्टिफिशियल है, रियल तो नहीं है। एक छोटी सी बात सुनाते हैं कि एक बार एक गरीब घर की महिला थी, वो किसी बड़े घर में काम करने जाती थी, तो उसने देखा कि बड़े घर की मालकिन लाख का चूड़ा पहन करके बैठी हुई थी आंगन में, और आसपास की महिलाएं उसके आंगन में आ रही थी, उसका हाथ पकड़ के उसका चूड़ा देखती थी और उसको बहुत बधाई देती थी, सिठानी चूड़ा बहुत सुंदर है, कहाँ से मंगवाया, बड़ा सुंदर लग रहा है, ऐसे महिमा करती जाती थी, एक आई दूसरी आई तीसरी आई, और वो बहुत ही खुश हो रही थी महिमा सुन सुन के। किसी को उसकी कीमत बताती थी, किसी को कहाँ से मंगवाया वो वाली बात बताती थी, ऐसे करके खूब वर्णन कर रही थी, तो वो बर्तन मांजने वाली देख रही थी कि ये चूड़ा पहनने से तो बहुत महिमा हो जाती है, अगर एक चूड़ा पहनने से इतने लोग बधाई देने आते हैं तो ऐसी बधाई तो मुझे भी चाहिए, और देखो ये सेठानी कितनी खुश हो रही है, अगर मैं भी ऐसा पहन लूं तो मैं भी इतनी खुश होऊंगी। तो वो घर गई और उसने घर में जाके शोर मचा दिया कि मुझे भी चूड़ा ला करके दो, मैं भी पहनूंगी। तो घर वालों ने कहा देखो वो तो अमीर है, और तुम गरीब हो, इसलिए उसकी बराबरी मत करो। उसने कहा, अमीर गरीब की बात नहीं है, अगर वो खुश हो सकती है तो क्या खुश रहना मेरा हक नहीं है? मुझे भी खुश होना है, और अगर चूड़ा पहन के मैं खुश हो सकती हूँ तो इसमें आपका क्या जाता है? मुझे मंगवा दो। घर वालों ने कहा, ये तो बहुत महंगा होता है। उसने कहा, मैं कमाती हूँ बर्तन मांज के, तो मेरी एक तनख्वाह में चूड़ा तो आ ही सकता है। या तो मुझे मंगवा के दो, नहीं तो मैं अगले दिन से काम पे ही नहीं जाऊंगी। तो जब घर वालों ने देखा कि ये जिद करके बैठ गई है, तो मंगवा दिया। और वो भी जो मजदूरों की बस्ती थी, उसकी एक झोपड़ी थी, तो झोपड़ी के बाजू में जैसी वो सिठानी बैठी थी, बड़े सुंदर से पीढ़े के ऊपर, मूढ़े के ऊपर, इतना सुंदर सा तो नहीं था, पर दो तीन ईंटे रख करके उनके ऊपर बैठ गई और इंतजार करने लगी कि कोई तो आएगा और मुझे बधाई देगा। हाथ भी उसने ऐसे आगे कर लिए क्योंकि चूड़ा दिखे सबको और लोग देखें। अब वो मजदूरों की बस्ती थी, लोग 8 बजे चले जाते थे अपने अपने काम पे, दौड़े दौड़े जाते थे। बैठी रही बेचारी, कोई नहीं आया, तो उसने सोचा कि ये लोग काम पे चले गए, शाम को जब वापस लौटेंगे तब आएंगे। तो जब शाम को मजदूर लोगों के वापस लौटने का समय हुआ, 5 बजे, वो फिर बैठ गई उन ईंटों के ऊपर और हाथ उसने आगे कर लिए। अब शाम को मजदूर लोग तो थके थकाए आए, बाल बच्चों को भोजन खिलाना, किसी को पानी भरना, किसी को और कई काम छोड़ के गए आधे वो पूरे करने, अपनी अपनी झोपड़ी में अपने अपने काम में लग गई। किसको फुर्सत थी उसकी तरफ आने की, वो देखती रही। 5 के 6 बज गए, कोई नहीं आया। उसको बहुत निराशा होने लगी, एक ने भी मेरी महिमा नहीं की, एक ने भी मेरा चूड़ा नहीं देखा। इतनी निराशा हुई कि उसने अपनी झोपड़ी को आग लगा दी। जब झोपड़ी को आग लगी और ऊंची ऊंची लपटें उठी, तो मजदूरों ने देखा, अरे भाई फलानी की झोपड़ी जल रही है, तो अपना अपना काम छोड़ करके भागे आग बुझाने के लिए। किसी ने मिट्टी से बाल्टी भरी, किसी ने पानी से बाल्टी भरी और झोपड़ी के ऊपर डाली। और वो बहन थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई, और हाथ तो अभी भी उसके ऐसे ही थे, चूड़ा बड़ा सामने दिख रहा था। तो एक मजदूर महिला उसके नजदीक गई, उसने कहा, तुम्हारी झोपड़ी तो जल गई पर कुछ बचा के नहीं बचा? उसने कहा, बस ये चूड़ा बचा है, बाकी तो कुछ भी नहीं बचा। उसने कहा, अरे ये इतना सुंदर चूड़ा तुम कहाँ से लाई? उसने कहा, यही बात तुम सुबह पूछ लेते तो मैं झोपड़ी को आग क्यों लगाती। अब झूठी महिमा, वो भी एक अग्नि की तरह से भीतर जलती है कि मुझे प्रशंसा मिले, मेरी महिमा हो, और उसके लिए किसी भी तरह से बातों को घुमा के फिरा के, या कोई भी प्रसंग हो या ना हो, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि लोग इस बात को शुरू करें, मेरी बात आए, मुझे कुछ कहने का मौका मिले, मेरी कहीं ना कहीं बीच में एडिशन हो जाए। हम उसी फिराक में लगे रहते हैं क्योंकि हमको महिमा चाहिए, बाय हुक एंड क्रूक महिमा चाहिए, और इसमें हमको बेचैनी बहुत होती है। हम इंतजार करते रहते हैं, नाम कब आएगा, भूखे प्यासे इंतजार में बैठे रहते हैं, कब होगा, नहीं हुआ तो फिर हम ये करेंगे, फिर हम ये तरीका अपनाएंगे। तो कितनी एनर्जी जाती है, कितनी शक्तियां जाती हैं, कितने संकल्प व्यर्थ जाते हैं। जो मन भगवान में लगना चाहिए था, निश्चिंतता होनी चाहिए थी, एक रस स्थिति बननी चाहिए थी, अंदर का सुकून और शांति मिलनी चाहिए थी, वो सारी चीजें तो नष्ट हो जाती। और एक छोटे से नाम के पीछे, मान के पीछे हमारी सारी एनर्जी कुर्बान हो जाती है। मिलता है अल्पकाल का मिला, खाया और हम फिर खाली हो गई, फिर हम उसी तरह से अल्पकाल की कोई बात ढूंढने में लग जाते हैं। इसलिए खुशियां बहुत दूर चली जाती हैं। और इस दुनिया में प्राप्ति और अप्राप्ति की भी एक साइकोलॉजी है। जो चीज हमें मिलती नहीं है, जब तक चीज हमसे दूर होती है हमको वो सोने जैसी लगती है। उसको पाने के लिए हम इतने हाथ पांव मारते हैं, मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तन मन धन लगाते हैं, और जैसे ही वो चीज हमारे नजदीक आ जाती है हमको मिट्टी जैसी लगने लगती है। तो बेकार है, किसी काम की नहीं है। इससे अच्छी अच्छी चीजें तो दुनिया में बहुत सारी हैं। इतनी मेहनत करके उस चीज को प्राप्त किया, अब वो तो मिट्टी जैसी लगने लगी। फिर क्या करेंगे? फिर कोई दूर वाली चीज के पीछे फिर दौड़ेंगे, वो बढ़िया है, उसको प्राप्त करेंगे। वो जब मिलेगी ना तब खुशी मिलेगी, और फिर हम उसी पुरुषार्थ में लग जाते हैं। फिर मेहनत की, समय लगाया, एनर्जी लगाई, और मिलने के बाद नजदीक आ गई तो वो चीज फिर मिट्टी जैसी लगने लगी। अब हम तीसरी चीज के पीछे भागने लगते हैं। तो आदमी जिंदगी भर भागता ही रहता है। जो मिल गया उसका सुख तो कभी लेता ही नहीं, इसलिए खुशी आए कहां से? जो मुझे उपलब्ध है मैं उसका सुख तो लूं? मेरे पास बहुत चीजें हैं, मेरे नजदीक, मेरे आसपास मुझे मिली हुई, जिन पे केवल मेरा अधिकार है, ऐसी बहुत चीजें हैं। मैं उनको अप्रिशिएट करूं, उनको यूज करूं अपने लिए, परमार्थ के लिए, तो मुझे खुशी मिले। लेकिन जो नजदीक वाली है उनको हम इग्नोर करते हैं, और दूर वाली हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए कहती हैं हम दोनों से चले जाते हैं, दोनों से ही वंचित रह जाते हैं। जैसे कहती हैं कि एक बार एक राजा ने बहुत सुंदर बगीचा बनाया था, बहुत ही सुंदर था वो, हर तरह के फूल थे, बहुत सुंदर लॉन थे, फलों वाले पेड़ थे, लेकिन राजा बहुत व्यस्त रहता था, कभी बगीचे को देखने ही नहीं जाता था। एक सन्यासी बगीचे में आके बैठा, तो वहां वो साधना भी करता था और बगीचे का आनंद लेता था, प्रकृति का आनंद लेता था, प्रकृति का आनंद लेते लेते भगवान को भी याद करता था, बहुत खुश रहता था। तो कई बरस के बाद राजा बगीचे में गया, सन्यासी को उसने बहुत ही आनंदित देखा। राजा के कुछ सेवक थे, सन्यासी के पास जाके कहते हमारा राजा आ रहा है, वो इस बगीचे का मालिक है, तो आप उनसे मिलना, सलाम करना। उसने कहा नहीं, बगीचे का मालिक तो मैं हूँ। उसने कहा आप कैसी हैं? इतनी देर में राजा नजदीक आ गया। राजा ने कहा बगीचा तो मैंने लगवाया, मैंने मेहनत करवाई, मैंने खर्च किया, मेरे सेवक यहाँ सब काम करते हैं, तो आप कहते हैं बगीचा मेरा है। तो सन्यासी ने एक बहुत सुंदर बात कही, चीज उसी की होती है जो उस चीज का सदुपयोग करता है। जो सदुपयोग करता ही नहीं वो उसकी है ही नहीं। इसका सदुपयोग तो मैं कर रहा हूँ, यहाँ की एक एक चीज को देख के मेरा भगवान में मन लगता है, मैं आनंदित रहता हूँ, यहाँ बैठ कर के मैं भजन करता हूँ, शुभ संकल्प करता हूँ, इसका उपयोग तो मैं कर रहा हूँ। आपको तो मालूम ही नहीं कि यहाँ क्या है, कितना आनंद है, तो आपकी ये कैसी हो गई? अब हमारे पास भी बहुत शक्तियां हैं, अगर हम उनका उपयोग करते हैं तो हम उनके मालिक हैं। हमारे पास मन की शक्ति है, बुद्धि की शक्ति है, संस्कारों की शक्ति है, अगर हम उसका सदुपयोग करते हैं तो हम उनके मालिक हैं। अगर सदुपयोग नहीं करते हैं तो माया मालिक है फिर उनकी, फिर हम तो मालिक है नहीं। इसलिए हमें जो मिला है हम उसका उपयोग करें, आनंद लें, उसको देख देख करके खुश हों, और उसको बढ़ाएं भी, उसको अच्छे काम में लगाएं भी, तब हमको खुशी होती है। नहीं तो कई बार क्या होता है, हमारी चीजें ही हमारे लिए बर्डन का कारण बन जाती है। चीजें तो बहुत सारी हैं, लेकिन उन्हें देख देख करके आदमी को कुढ़न आती है, ये भी पड़ी है, इसका ये काम बाकी है, ये भी पड़ी है। तनाव का मूल कारण क्या है? चीजें बहुत है हमारे चारों तरफ, हम एक का भी ठीक से यूज नहीं कर पा रहे हैं, एक का भी सुख नहीं ले पा रहे हैं, तो उन्हें देख देख करके कुढ़न होती है। कई बार मन करता है इन्हें उठा करके फेंक दे। ये भी आजकल लोगों की एक मानसिकता है, अपनी ही चीजों को देख करके वो परेशान होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जो मिला उसका सुख लो, उसका सदुपयोग करो, उसको काम में लगाओ। हमें तो बहुत कुछ मिला है, बहुत सारी शक्तियां मिली हैं, बहुत सारे खजाने मिले हैं। बाबा ने हमको अनेक खजानों से मालामाल किया है। आपने कई बार देखा होगा भारत में कुछ कुरीतियां भी हैं, जैसे आप गांव में देखेंगे किसी व्यक्ति के बहुत करीबी रिश्तेदार ने शरीर छोड़ दिया, या घर के बड़े व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया, दादा ने परदादा ने, तो घर के लोग योजना बनाते हैं कि इसके नाम के कोई यादगार बनाई जाए, पैसा तो बहुत है। तो कई बार वो कहेंगे देखो भाई हमारा एक खेत है और खेत में हम एक मंदिर बनवा देते हैं। अब खेत है मान लीजिए आधा किलोमीटर दूरी पे, और वहां मंदिर बना भी दिया तो कितने लोग वहां पे जाएंगे? गांव के लोग, गांव की महिलाएं, गांव के गांव में मंदिर हो तो पूजा कर लेती हैं, लेकिन इतनी दूर तो कोई नहीं जाएगा। और अगर आप उस मंदिर में जाएंगे भी तो आप वहां क्या देखेंगे? या तो गाय भैंस उसके चारों ओर घूम रही होंगी, या कोई कुत्ता बिल्ली उसके अंदर घुसा हुआ होगा, लेकिन आदमी तो वहां मिलेगा नहीं। अब संपत्ति तो वहां लग गई 2 लाख की, 3 लाख की, 4 लाख की, लेकिन काम किसको आ रहा है? या तो 6 महीने में, साल में उस घर के लोग आते हैं तो वहां एक बार दर्शन करने चले जाते हैं, नहीं तो वो चीज बंद पड़ी रहती है। अब इसी के बजाय उसी चीज को शहर में किसी जरूरतमंद को दिया जाता। अगर बस स्टैंड नहीं है, बस स्टैंड बनाया जाता। अगर कोई स्कूल कॉलेज है वो खुलवाया जाता, रेगुलर उसका यूज होता, तो वो संपत्ति सुख देती। लेकिन अब तो वो यूजलेस पड़ी हुई है। हाँ इतना नशा है कि भाई एक चीज है, लेकिन सुख उसका किसी को भी नहीं मिल रहा है। तो जो चीजें यूज नहीं होती हैं, चाहे वो धन हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, अगर वो यूं ही पड़ी हुई है तो मालिक को उसका सुख नहीं मिल सकता, खुशी नहीं मिल सकती, दूसरों की दुआएं भी नहीं मिल सकती। हमको याद है यहाँ एक पाठशाला है, एक गांव है, उस गांव के मैक्सिमम लोग बाहर रहते हैं और बड़ी बड़ी हवेलियां खाली पड़ी हुई हैं, ताला लगा हुआ है। तो उस गांव में एक धर्मशाला बनवाई गई थी, काफी बड़ी धर्मशाला, हमेशा उसको ताला लगा रहता था। तो एक बार जब हम उस गांव में गए तो कुछ सफेद पोश लोग धर्मशाला के आगे बैठे थे, देखने में बड़े अच्छे रॉयल लग रहे थे। तो हमने उनको पूछा भाई साहब ये धर्मशाला आपकी है क्या? बोला हाँ। हमने कहा हमेशा तो इसको ताला लगा रहता है। तो उन्होंने कहा ये जी साल में 3 दिन खोलते हैं हम लोग, क्योंकि हम तो बम्बई रहते हैं और हमारी पूजा का एक पर्टिकुलर समय होता है, तब हम इकट्ठे होके आते हैं, तब इसको खोलते हैं, ये सफाई करवाते हैं, पूजा करते हैं, किसी गरीब को कुछ थोड़ा बहुत दान देते हैं और 3 दिन के बाद हम चले जाते हैं। तो मैंने हंसी हंसी में उनको कहा कि नाम तो इसका आपने धर्मशाला रखा, पर साल भर में धर्म का काम तो 3 दिन होता है, बाकी टाइम तो ये कॉकरोच शाला है या फिर मकड़ी शाला है या फिर चूहिया शाला है, क्योंकि इसमें बाकी 360 दिन कौन रहता है? मकड़ियां रहती हैं, चूहिया रहती हैं, छिपकलियां रहती हैं, कॉकरोच रहते हैं। साल में एक बार आके आप उनको निकाल देते हैं, आपके जाने के बाद वो फिर जम जाते हैं, तो ज्यादा टाइम कौन रहता है? आदमी रहता है क्या? कौन रहता है ज्यादा टाइम? और ज्यादा टाइम धर्म का काम होता है या क्या होता है? धर्म का काम तो 2-3 दिन होता है, इसलिए खुशी मिलती है चीज को काम में लगाने से। हमारी सब शक्तियां, चाहे तन की शक्ति हो, मन की शक्ति हो, धन की शक्ति हो, वो काम में लगनी चाहिए। मैं तो कई बार ये भी चिंतन करती हूं कि हमें ये जो तन मिला, हमें अपने लिए इसकी जितनी शक्ति चाहिए उसे कई गुना इसमें अधिक शक्ति। जैसे व्यक्ति का काम तो एक हाथ से भी चल सकता है, लेकिन उसको 2 हाथ मिले हैं ताकि वो किसी का परोपकार भी कर दे। उसका काम एक कान से भी चल सकता है, चलता है, बहुतों का चलता है, लेकिन हमें 2 कान मिले ताकि हम किसी और की पीड़ा भी सुन सकें। हमें 2 आंखें मिली ताकि हम किसी दूसरे के दुख दर्द को भी देख सकें। और शरीर में इतनी ताकत है कि हम अपना बोझ उठाने के साथ साथ किसी और का भी बोझ उठा सके। अब मान लीजिए हम उस शक्ति का सदुपयोग नहीं करते, हम औरों का बोझ उठाने के बजाय अपना ही बोझ किसी और से उठवाना चाहते हैं, तो परिणाम क्या होगा? हमारी शक्ति कुंठित होगी, हमारी शक्ति कमजोरी में बदल जाएगी, हमारी शक्ति बीमारी में बदल जाएगी। और अगर उस शक्ति का हम सेवार्थ परोपकार में यूज करेंगे तो बीमारी होते हुए भी, क्योंकि शक्ति का सदुपयोग हुआ, तो ठीक हो जाएगी। इसलिए इस तन की शक्ति का भी हम पूरा सदुपयोग करें। इसमें जितने घंटे सेवा करने की योग्यता है उतना घंटा इससे सेवा करवाएं। शुद्ध संकल्पों की जो शक्ति है उसका पूरा सदुपयोग करें। 24 घंटे में एक एक संकल्प के ऊपर नजर रखें, खुशी मिलेगी। हमारी खुशी हमारे अपने कर्मों में है, हमारे अपने हाथ में है, हमारी खुशी किसी और के पास नहीं है। हम अपनी खुशी के जन्मदाता, खुशी के निर्माता और खुशी के रचयिता हैं। हमारे मन, वचन, कर्म से हम जो कर्म करते हैं, जो भी कुछ सेवा करते हैं, उसी से हमें खुशी मिलती है, और उनको अगर सही उपयोग नहीं करते हैं तो खुशी चली जाती है। इसलिए बाबा ने कहा, सेवा करो लेकिन निमित्त भाव से करो। निमित्त भाव एक बहुत सुंदर भाव है, उसमें मैंपन का पूरी तरह से अभाव है। रामायण में इसका बहुत सुंदर उदाहरण आता है। जब श्री राम जी वनवास चले गए तो भरत ने कहा, मैं पीछे से गद्दी को संभालूंगा, लेकिन खड़ाऊ रख करके संभालूंगा। तो भरत खड़ाऊ लेकर के अयोध्या में आ गया। अब राजा तो राम ही है, मालिक तो राम ही है, लेकिन अब राम सामने नहीं है तो उसकी खड़ाऊ उसका काम कर रही है। और भरत कहता है, मैं सेवक बन करके, राम का सेवक बन करके राज्य भी चलाऊंगा, प्रजा की भी सेवा करूंगा। तो भरत ने ड्यूटी संभाल ली, उसने राजमहल छोड़ दिया, सरयू नदी के किनारे अपना डेरा लगा लिया, भगवा वस्त्र धारण कर लिए, जमीन पर सोना चालू कर दिया, कंदमूल फल खाना शुरू किया, जैसा जंगल में राम का जीवन था बिल्कुल अपना जीवन वैसा ही बना लिया। लेकिन प्रजा के सुख दुख का पूरा ख्याल रखा, राज्य में कोई दंगा ना हो, कोई असंतुष्ट ना हो, कोई भूखा गरीब ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा, कोई विदेशी आक्रमण ना हो, प्रजा के लोग आपस में मिलजुल करके रहें, अंतर्कलह ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा। तो एक तरफ पूरी जिम्मेवारी उठाई लेकिन दूसरी तरफ अपने आप को राजा भी नहीं कहलवाया और राजाई सुख भी नहीं लिए। जिम्मेवारी पूरी उठाई लेकिन राज्य का भोग नहीं किया। इसको कहते हैं निमित्त भाव। काम सारे किए लेकिन ना नाम चाहिए, ना पद चाहिए, ना प्रशंसा चाहिए, ना पैसा चाहिए। आज की दुनिया में हम देखते हैं इससे उल्टा होता है। वो कहते हैं काम तुम करो और गद्दी पर हमें बिठाओ। नाम हमारा होना चाहिए, पद हमारा होना चाहिए, पैसा हमें मिलना चाहिए और काम कोई और करे। तो परिणाम क्या होता है? विघ्न आ जाते हैं। लेकिन निर्विघ्न बनने की फिलॉसफी ये है कि काम मैं करूं, जिम्मेवारी से करूं, पूरा का पूरा करूं, सबको संतुष्टता प्रदान करूं, लेकिन भले ही मुझे कुछ भी ना मिले, नाम ना मिले, शान ना मिले। इसलिए राम के पीछे भी अयोध्या सुरक्षित रही। अब अगर इस बात को हम अपने आप पर लागू करें, हमें जो भी सेवा मिली है, चाहे हम जहां भी हैं, हम अपने घर में हैं, सेंटर पे हैं, मधुबन में हैं, अपने ऑफिस में हैं, कहीं भी हैं, हम भी सेवा करते हैं, हमें ये तो मालूम है कि सब कुछ भगवान का है। मालिक वही है जिसका माल है, धनी वही है जिसका धन है। तो फिर हम कौन हुए? हम तो भरत की तरह से सेवक हुए, गद्दी तो भगवान की है। अब अगर हम ये मान करके चलती हैं कि भगवान भले साकार रूप में सामने नहीं है पर खड़ा हूं तो उसी की है, गद्दी का मालिक तो वही है और मैं भरत की तरह से उसका वफादार सेवक, इसलिए मुझे सेवा मन लगा करके करनी है, जिम्मेवारी से करनी है। लेकिन सेवा करने के बाद सेवा का क्रेडिट किसको सौंपना है? भगवान को सौंपना है, क्योंकि करण करावन हार वही है, मालिक वही है, दाता वही है और मुझे सेवा करने की शक्ति देने वाला भी वही है। अगर मैं उसको याद ना करूं, अगर मेरे पास उसका ज्ञान ना हो तो ये सेवा मैं ज्ञान में आने से पहले क्यों नहीं कर सका? ज्ञान में आने के बाद ही मेरे में ये हिम्मत क्यों आई? तो ये उसके ज्ञान की कमाल है, उसके याद की कमाल है। इसलिए सेवा करते करते भी हम उसके गुण गाते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं और सेवा करते भी सब कुछ उसको समर्पित करके हल्के रहते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि ये भारत स्वर्ग बन जाए, दुनिया अच्छी बन जाए, लोगों के दुख दूर हो जाए, हमारी एक ही इच्छा है। और ये सारे काम तब होंगे जब लोग भगवान को पहचानेंगे, जब भगवान प्रत्यक्ष होगा। अगर मैंने अपने आप को प्रत्यक्ष कर लिया तो भगवान तो छिप जाएगा और अगर मैं अपने को छिपा लूं तो भगवान प्रत्यक्ष हो जाएगा। अब मुझे दोनों में से चुनाव करना है कि मैं किसे छिपाऊं और किसे प्रत्यक्ष करूं, ये मेरा चुनाव है। अगर मैं गुप्त रहूं तो बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा, लोग बाबा को देखेंगे, बाबा को पहचानेंगे, बाबा से उनका कनेक्शन जुटेगा। और अगर मैं प्रत्यक्ष हो गया तो लोग मेरे में अटक जाएंगे, मेरे से कनेक्शन जुट जाएगा और बाबा दूर हो जाएगा, तो बाबा का जो कार्य है वो उतना ही पीछे चला जाएगा। इसलिए मुझे प्रत्यक्ष नहीं होना है, मुझे गुप्त रहना है और मुझे अपने कर्मों से अपने प्यारे बाबा को प्रत्यक्ष करना है, चाहे वो किसी भी प्रकार की सेवा हो, मेरे बाबा का नाम हो, मेरे बाबा का नाम ऊंचा हो, लोग मेरे बाबा को जाने, लोग मेरे बाबा की महिमा करें और लोग मेरे बाबा से जुड़ें। अगर हमें बार बार ये भावना आती है तो हमारी खुशी इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, जैसे कहते हैं हमारे जर्रे जर्रे से खुशी झलकेगी। कभी मूड ऑफ हो, कभी निराशा आए, हताशा आए, कभी उमंग कम हो ही नहीं सकता, ये सब जहरीले कीटाणु हैं। और ये तभी प्रवेश करते हैं जब हमारे भीतर में कोई नेगेटिविटी आती है, स्वार्थ आता है। जब हम पारदर्शी हो जाते हैं, अंदर बाहर एक हो जाते हैं, निस्वार्थ हो जाते हैं, मैंपन बिल्कुल खत्म हो जाता है, मैं की बजाय तेरा तेरा, तू ही तू, ये भावना आ जाती है, तो लोगों को बाबा दिखने लगता है, गुप्त बाबा, बिंदु रूप बाबा भी लोगों को दिखने लगता है और लोग उसे बहुत जल्दी पहचान जाते हैं, उससे जुड़ जाते हैं। तो हम सब ऐसे बने, ऐसे गुप्त सेवाधारी बने। और जैसे बाबा ने कहा कि लोग आपका चेहरा देख के खुश हो जाएं, आपको बोलना ना पड़े, तो बिना बोले हमारी सेवा हो जाए, हमारी मेहनत भी कम हो जाएगी, हमें कम साधनों की जरूरत पड़ेगी, कम खर्च में बहुत सारी सेवा हम कर पाएंगे। तो ऐसा हम बहुत जल्दी बने, इसी शुभकामना के साथ ओम शांति।
खुला आसमान मिला।